दिन भर 4 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान।
सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे।
दुनिया जहान में आज चर्चा होगी रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों पर।
उनके भी सस्पेशन होंगे हमारी दोस्ती यूएस के साथ जो बढ़ रहा है। 1971 में रशिया यूएस के साथ या चाइना के साथ लड़ने को तैयार थे हमारे लिए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 4 और 8 मार्च को चुनाव होगा, जबकि पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 लड़के रात के वक्त एक लड़की को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़कों ने छेड़खानी के बाद लड़की को सड़क पर पटक दिया और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि इस वीडियो में दिख रहे लड़कों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी हैं। इसराइल की एक सैन्य अदालत ने अपने एक सैनिक को पश्चिमी किनारे पर घायल एक फलस्तीनी हमलावर की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया है। एक वीडियो फुटेज से पता चला है कि घायल फलस्तीनी सड़क पर पड़ा हुआ है और इसराइली सैनिक उसे गोली मार रहा है। घायल फलस्तीनी एक सैनिक को छुरा मारने की घटना में शामिल था। इसराइली सैनिक का कहना है कि घायल फलस्तीनी आत्मघाती जैकेट से धमाका कर सकता था, इसलिए उसे गोली मार दी गई, लेकिन अभियोजकों ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इसराइली जनमत इस पूरे मामले पर बटा हुआ है। रक्षा मंत्री लिबरमैन का कहना है, इस कठिन फैसले के बावजूद जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम सब कानून का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। इसके बावजूद रक्षा मंत्रालय अपने इस सैनिक के परिवार की हर संभव मदद करेगा। ये थे इसराइली रक्षा मंत्री के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की ने चेतावनी दी है कि सीरिया में सरकार समर्थित ताकतों के जरिए संघर्ष विराम के उल्लंघन से शांति वार्ता पर खतरा मंडरा रहा है। तुर्की ने संघर्ष विराम का उल्लंघन रोकने के लिए ईरान से भी प्रयास करने के लिए कहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी सहयोगी है और शिया मुसलमान लड़ाके भी असद के समर्थन में लड़ रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दोवान ने कहा है कि नए साल के मौके पर इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हमला तुर्की के समाज को बांटने की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। फिलीपींस में एक जेल से कम 130 कैदी फरार हो गए हैं। इस घटना में जेल का एक अधिकारी भी मारा गया है। फिलीपींस नेशनल पुलिस के प्रवक्ता डियोनार्डो कार्लोस का कहना है, जब हमला हुआ 2 घंटे तक मुठभेड़ होती रही। जेल के प्रहरियों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की और इसका फायदा उठाकर कई कैदी जेल के पिछले हिस्से की दीवार पर सीढ़ी लगाकर फरार हो गए। अब फरार हुए कैदियों की तलाश की जा रही है। ये थे फिलीपींस नेशनल पुलिस के एक प्रवक्ता के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स को अब वैज्ञानिक अब्दुस सलाम के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इस बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब्दुस सलाम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तान के एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें अहमदी संप्रदाय से होने की वजह से काफ़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखी चिट्ठी में 13 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने म्यांमार में मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे मानवीय त्रासदी बताते हुए नस्ली सफाया और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। इस खत में म्यांमार की नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची की खुलकर आलोचना की गई है। रोहिंग्या बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, उनमें से अधिकतर इस्लाम को मानते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। देश की सियासत के लिए सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 4 फरवरी से 8 मार्च तक अलग अलग चरणों में होगा। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का पहला बड़ा इम्तहान होंगे। इन 5 राज्यों में मतगणना एक साथ 11 मार्च को होगी। विनीत खरे की रिपोर्ट।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सैयद नसीम अहमद जैदी ने आज बुधवार को एक समाचार सम्मेलन में इस बात की घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम 4 फरवरी से शुरू होगा, जब गोवा की 40 और पंजाब की 117 सीटों के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। ये मतदान 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को होगा। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए मतदान 15 फरवरी और मणिपुर की 60 सीटों के लिए मतदान 4 और 8 मार्च को होगा। आज की घोषणा के साथ ही सरकारों और उम्मीदवारों पर मॉडल कोड लागू हो गया है।
नाउ आवर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट।
अभी से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। ये मॉडल कोड उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों पर लागू होगा। ये मॉडल कोड केंद्र सरकार पर भी लागू होगा, जहां तक इन राज्यों से जुड़ी उनकी घोषणाओं और नीति पर फैसलों की बात है। ये थे नसीम अहमद जैदी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में एक उम्मीदवार चुनावी प्रचार पर 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि मणिपुर और गोवा में अधिकतम सीमा 20 लाख तक होगी। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सैयद नसीम अहमद जैदी ने कहा,
कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट्स इन देयर बैंक्स एंड एज पर आवर डायरेक्शंस।
हर उम्मीदवार को एक बैंक अकाउंट खोलना होगा और 20,000 से ज्यादा किसी खर्च का भुगतान चेक से होगा। 20,000 से ज्यादा किसी चंदे का भुगतान भी चेक से होगा। पेड न्यूज की समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयुक्त ने मीडिया से मदद की अपील की।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द प्रेस काउंसिल।
प्रेस काउंसिल ने कुछ सदस्यों को नामांकित किया है, वो पेड न्यूज को पहचानने में मदद करेंगे। ऐसे कुछ टीवी चैनल हैं जिनके मालिक राजनीतिक दल और उम्मीदवार हैं। ये टीवी चैनल उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। जिला स्तर पर हमारी मीडिया मॉनिटरिंग समिति इन चैनलों पर नजर रखेंगे और अगर प्रचार होता है तो प्रचार का खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ दिया जाएगा। ये थे सैयद नसीम अहमद जैदी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जारी झगड़े और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,
कल शाम श्री रामगोपाल यादव की ओर से एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल हमारे कमीशन में प्रस्तुत किया गया है। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे।
यहां गौर करने की बात है कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा और पहला मतदान 4 फरवरी को। क्या इससे मॉडल कोड पर असर पड़ेगा? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्हें इस बारे में एक विरोध पत्र मिला है और वक्त आने पर उस पर फैसला लिया जाएगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
भारत के किसी भी राज्य में किसी राजनेता के मरने पर नेतृत्व में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है जितना शायद तमिलनाडु में। AIDMK की सुप्रीमो जयललिता के देहांत और DMK नेता करुणानिधि की तबीयत खराब होने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नए युग की शुरुआत हुई है। शशिकला जहां AIDMK की महासचिव बनाई गई हैं, वहीं स्टालिन को DMK का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले महीने जब मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हुआ तो विश्लेषकों ने कहा था कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव के इशारे नजर आ रहे हैं। कारण ये था कि सितंबर में जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई तो स्टालिन ने उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की थी और जब उनके पिता करुणानिधि अस्पताल में भर्ती हुए तो अन्ना DMK के नेता तंबी दोरे उनको अस्पताल देखने चले गए थे। इससे राजनीतिक कड़वापन जो जयललिता और करुणानिधि के बीच था और जिसका उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ा था, वो आखिरकार कम होता दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी कहते हैं, अभी व्यक्तित्व आधारित राजनीति नहीं होगी, इतना तो स्पष्ट है। अब से प्रदर्शन आधारित राजनीति होगी। ये थे एस मुरारी के शब्द। पिछले हफ्ते VK शशिकला को अन्ना DMK का कमान सौंपा गया और आज स्टालिन को DMK का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। स्टालिन को यह नया पद विशेष रूप से बनाया गया है क्योंकि करुणानिधि अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मालन का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव अभी से अलग होगी। मालन ने कहा,
So he literally rose from the ranks in the sense he started organizing the youth wing. There was no youth.
अभी व्यक्तित्व आधारित राजनीति नहीं होगी, इतना तो स्पष्ट है। अब से प्रदर्शन आधारित राजनीति होगी। ये थे एस मुरारी के शब्द। एक तरफ स्टालिन है जो लोगों के बीच जाकर संपर्क बनाए हैं, ऐसे राज्य में जहां जयललिता जैसे नेता सिर्फ जनसभा संबोधित करती थी। दूसरी तरफ अन्ना डीएमके मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम है और शशिकला है जो अभी तक लोगों से संपर्क करते नहीं दिखे हैं। एक और राजनीतिक विश्लेषक के एन अरुण कहते हैं,
अनलाइक उमर अब्दुल्ला और अखिलेश फॉर दैट मैटर इवन राहुल गांधी,
स्टालिन बहुत सालों का काम करने के बाद इस पद पर पहुंचे हैं। हालांकि उनके पिता करुणानिधि हैं, लेकिन उनकी अहमियत तभी देख सकते हैं जब अन्ना डीएमके में किस तरह शशिकला अपना बल समेकित कर सकती हैं। हम ये ना भूलें कि डीएमके जैसे पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ये कहा था कि उसकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ये थे केएन अरुण के शब्द। अरुण का कहना यह है कि शशिकला को पार्टी के नेताओं से तो समर्थन मिल गया है, लेकिन कार्यकर्ता उतने खुश नहीं है, इसीलिए डीएमके का प्रस्ताव कुछ मायने रखता है। मतलब ये कि नाखुश अन्ना डीएमके के कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए डीएमके तैयार है। तीन दशक पहले ऐसी सोच भी बेबुनियाद मानी जाती थी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
रोजवेली चिटफंड मामले में कल कोलकाता में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय आज दोपहर बाद भुवनेश्वर में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किए गए। एक ओर जहां बंदोपाध्याय की ओर से जमानत की याचिका दायर की गई है, वहीं सीबीआई ने उन्हें 12 दिन के रिमांड पर लेने की मांग की है। इससे पहले सीबीआई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से यहां के विशेष सीबीआई अदालत में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अदालत ने इस पर अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि बंदोपाध्याय ने रोज वैली के लिए प्रचार किया था। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बंदोपाध्याय ने रोज वैली के पैसे से कई बार विदेश का दौरा किया, लेकिन बंदोपाध्याय के वकील राजीव मजुमदार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इन्हें साबित करने के लिए सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खुद बंदोपाध्याय ने अदालत से कहा कि उन्होंने विदेश के सारे दौरे अपने पैसों से किया। जमानत याचिका दायर करने से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बंदोपाध्याय के वकील राजीव मजुमदार ने कहा, सारे आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक आक्रोश से प्रेरित हैं। उन्हें केवल राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, सीबीआई के पास श्री बंदोपाध्याय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे पहले बंगाल के रामनगर के विधायक अखिल गिरी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। गिरी ने कहा कि नोटबंदी के मामले में टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश भर में छेड़ी गई मुहिम से बौखलाकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने टीएमसी के 2 सांसदों को गिरफ्तार करने की साजिश रची है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को पार्टी सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ भुवनेश्वर में एक विशाल प्रतिवाद सभा आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि रोजवैली मामले में टॉलीवुड स्टार और टीएमसी के सांसद तापस पाल की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद कल सीबीआई ने लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को कोलकाता में गिरफ्तार किया था और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया था। कल पाल की 3 दिन की पहली रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने उन्हें यहां के विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था और उन्हें दोबारा 3 दिन के रिमांड पर लिया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पाल और बंदोपाध्याय को आमने सामने बिठाकर उनसे जिरह की जाएगी।
टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय से भुवनेश्वर में पूछताछ।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। शीत युद्ध के जमाने में रूस और पाकिस्तान एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, लेकिन बीते साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि ये दोनों देश अब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। कुछ घटनाएं इस ओर भी इशारा करती हैं कि रूस और भारत के संबंधों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं रही और रूस अब भारत के बजाय पाकिस्तान को अधिक तरजीह दे रहा है। क्या वाकई रूस और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है? दुनिया जहान में इसी सवाल की पड़ताल कर रहे हैं संदीप सोनी।
दुनिया जहान। पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सैन्य ठिकाने पर चरमपंथियों के हमले के बाद भारतीय विदेश नीति को अंदर से एक झटका उस वक्त महसूस हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के साथ रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर आपत्ति जताई, जिसे रूस ने दरकिनार कर दिया और भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद अक्टूबर में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के जोर देने के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक कहने से मना कर दिया।
Everybody's approach very constructive. I just listened to, of course, like you, the speech of your leadership as well as the speech of Mr. Stathakis, which is very constructive. And
भारत और रूस के संबंधों की एक और तस्वीर दो महीने बाद दिसंबर में तब नजर आई जब अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आलोचना को रूस ने गलत बताया। ऐसा तब जब भारत की विदेश नीति रूस को अपना सबसे पक्का दोस्त मानती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रूस मामलों के जानकार नंदन उन्नीकृष्णन कहते हैं,
इस वक्त अगर देखा जाए तो उनकी दोस्ती बढ़ रही है। रूस पाकिस्तान को देख रहे हैं अफगानिस्तान के नजर से, समझ रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई स्टेबल सोल्यूशन निकल जाएगा तो उसमें पाकिस्तान का काफी रोल होगा। पाकिस्तान एक तरफ से प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ से अगर देखेंगे बिना पाकिस्तान का स्टेबल सोल्यूशन भी नहीं है, तो इस वजह से रूस थोड़ा सा अपनी दोस्ती जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है, शायद उनपे थोड़ा चाइना का भी प्रेशर है पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। पिछले दो तीन साल में रशिया के रिश्ते वेस्ट के साथ बहुत नीचे आए थे, मतलब बहुत कम हो गए थे यूक्रेन की वजह से और सैंक्शंस की वजह से। रशिया की अंदर की जो इकोनॉमिक हालत थी वो भी काफी खराब हो गई थी क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी गिरे थे पिछले साल में, तो इसकी वजह से उनको अपनी दोस्ती चाइना के साथ बढ़ाना पड़ा ताकि चाइना उनसे एक तो हाइड्रोकार्बन्स खरीदे और दूसरा उनको इन्वेस्टमेंट के मोड में मदद कर ले।
जानकार ये भी कहते हैं कि शीत युद्ध के बाद जियोपॉलिटिक्स काफी बदल गई है, जिसमें सोवियत संघ के बिखरने के उपरांत राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस दोबारा वैश्विक शक्ति बनना चाहता है और इसके लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान भी इसकी ही एक कड़ी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूसी मामलों की जानकार प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय कहती हैं,
सेंट्रल एशिया में उनका इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में उनका इंटरेस्ट है और चीन के साथ उनकी दोस्ती बहुत बढ़ रही है, तो इसके कारण उनका इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान से कुछ उनकी रिलेशंस बेहतर हो जिससे वो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर सके, खासकर वेस्ट एशिया और अफगानिस्तान में।
एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट ओनली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली।
भारतीय विदेश नीति के कुछ जानकारों का मानना है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सोवियत रूस के साथ शुरू हुई दोस्ती लगभग 65 साल तक जितनी गाढ़ी रही, दोस्ती में उतना गाढ़ापन हाल के वर्षों में कुछ कम हो गया है।
बिल्कुल, मतलब जितने हमारे सस्पिशंस है रूस के जो दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, उनके भी सस्पिशंस होंगे हमारी दोस्ती यूएस के साथ जो बढ़ रहा है। 1971 में रशिया यूएस के साथ या चाइना के साथ लड़ने को तैयार थे हमारे लिए, आज रूस किसी के साथ लड़ने को तैयार है हमारे लिए? मैं उस सवाल का जवाब
मुश्किल होगा मुझे देने।
नंदन उन्नीकृष्णन के तर्कों से सहमति जताते हुए प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय इस ओर भी ध्यान दिलाती हैं कि पाकिस्तान से रूस की नजदीकी का मतलब भारत से दूर होना नहीं, बल्कि रूस एक साथ कई दिशाओं में कई लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके पीछे राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता काम कर रही है।
मोदी सरकार का झुकाव जरूर अमेरिका के तरफ है, तो रूस कह रहा है कि आप भी अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हम भी बाकियों के साथ करें और सबकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो और ऑप्शंस हो। भारत में ये टेंशन हो रहा है कि अगर रूस पाकिस्तान की ओर झुकाव हो तो भारत का क्या होगा। मैंने रूस का जो देखा है उनका खुद एनालिसिस ये है कि उनकी मल्टी वेक्टर पॉलिसी है। इसका मतलब अगर एक के साथ दोस्ती बढ़ो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दूसरे के साथ कम होगी। वो भारत को प्रायोरिटी देंगे जैसे वो चीन को भी प्रायोरिटी देंगे, लेकिन पाकिस्तान से भी वो अपने रिश्ते सुलझाना चाहते हैं। मुझे लगता है चाइना एक काफी ब्रिज फैक्टर है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी समझ थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर देश की ट्रांजैक्शनल रिलेशंस हो सकती हैं। ये नहीं कि अगर एक साथ हो तो एक ही ब्लॉक में हो और दूसरे ब्लॉक्स के साथ आप संबंध नहीं कर सकते।
As far as Putin is concerned, I think Putin's been a very strong leader for Russia, but he's been a lot stronger than our leader, that I can tell you. I mean, for
नजदीकियों के इस कूटनीतिक खेल में कौन किसके करीब होगा, किससे दूर होगा, इसमें एक पेंच डोनाल्ड ट्रंप का भी है, जो कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ट्रंप का रुख रूस के प्रति कैसा रहेगा, उसका असर पाकिस्तान के प्रति रूस के रवैये पर पड़ेगा, लेकिन विदेश मामलों के ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ रूस की बढ़ती दोस्ती का मतलब ये नहीं कि भारत के साथ उसकी यारी कम हो गई है।
अगर पाकिस्तान के साथ भी उनकी दोस्ती बढ़ेगी फिर वो जो लॉस है अमेरिका की और जो अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ बढ़ रही है उसको वो बैलेंस कर सकते हैं। पर आजकल के जमाने में सब डिपेंड करेगा किस तरफ जाएंगे रिलेशंस रूस और अमेरिका के साथ ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद, क्योंकि अगर वहां दोस्ती शुरू हो जाएगी दोबारा तो काफी बदलेगी हालात इंटरनेशनल रिलेशंस के।
क्या रूस और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ रही है, क्या इसका मतलब रूस और भारत में दूरी का बढ़ना है? इस सवाल के जवाब में भारत, पाकिस्तान और पश्चिमी जगत के मीडिया में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। अमेरिका और रूस के बीच खुद भारत भले अमेरिका के नजदीक जाना पसंद करे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस पाकिस्तान को अपना नजदीकी बना ले।
An old friend is better than two new friends.
शायद यही वजह है कि मॉस्को की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
केरल में आज से 10 साल पहले एक तरह की सोच और एक ही विचारधारा के मानने वाले दो दर्जन मुस्लिम परिवारों ने फैसला किया कि वो आबादी से कहीं दूर जंगल के करीब अपना एक अलग गांव बसाएंगे। उनकी कोशिश थी एक आदर्श इस्लामी समाज बनाने की, जहां एक मस्जिद हो, एक मदरसा हो और जहां शांति से इस्लाम में बताए हुए रास्ते पर बिना किसी रुकावट के चला जा सके। ये लोग कट्टरपंथी सुन्नी विचारधारा सल्फी इस्लाम के मानने वाले थे। अतिक्कड़ नाम का ये गांव सल्फी विलेज के नाम से जाना जाता है। जुलाई में केरल से 20 सल्फी इस्लाम के मानने वाले युवाओं के अचानक गायब हो जाने से ये गांव सुर्खियों में आया। पुलिस के अनुसार ये युवा तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जा मिले हैं, लेकिन असल में वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम। सल्फी विलेज के लोग मीडिया से बच कर रहते हैं, लेकिन हमारे संवाददाता जुबैर अहमद को वहां जाने की इजाजत मिली। वहीं से उन्होंने ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
मैं इस समय सल्फी विलेज में हूँ। इसका जो एंट्रेंस है, जो द्वार है, वो इस तरफ है। ये मदरसा है और इसके पीछे जो मस्जिद है वो यहाँ पर है। ये बिल्कुल मामूली सी एक इमारत है, इसमें मस्जिद में मीनार नहीं है। तो गांव के एंट्रेंस जैसे आप दाखिल होते हैं तो मदरसा मिलता है, फिर मस्जिद मिलती है।
कालीकट शहर से 60 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में जंगल के निकट आबाद किए गए इस गांव को अतिकड़ का नाम दिया गया है। यहां मीडिया वालों को आने की इजाजत नहीं, लेकिन हमें निमंत्रण दिया यहां के एक निवासी यासिर अमानत सलीम ने। वो गांव की स्थापना करने वालों में से एक हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस्लामी समाज की स्थापना क्यों की गई, इस गांव को क्यों बनाया गया।
एक पूरा गलती छोड़ के हमको एक नया गांव बनाएगा, वो नया गांव में क्या एक मस्जिद बनाएगा, एक मदरसा बनाएगा, ऐसा सारे दुनिया के बीच में हम लोग बीच में हैं, लेकिन अभी थोड़ा दूर में एक जंगल का साइड में है ना, इसलिए ऐसा स्कूल और मस्जिद और एक गाँव वालों एक साथ एक नया दुनिया इस्लाम का दीन का इल्म का बारे में इधर एक इल्म का गांव बनाएगा, ऐसा हम लोग अरबी में एक मरकज फ्यूचर में एक मरकज इधर आएगा बनाएगा ऐसा सोचता था।
उनके अनुसार केरल में आज का मुस्लिम समाज गैर इस्लामी हो गया है। उनका आइडिया था कि खुद से आबाद किए गए गांव में वो असली इस्लाम पर अमल करेंगे और पैगंबर मोहम्मद के जमाने के इस्लामी समाज की स्थापना कर पाएंगे। आदर्श गांव की स्थापना हुई, लोगों ने अपने घर बनाए और गांव को ऊंची दीवार से घेर दिया, लेकिन अलग थलग रहने पर इस गांव की छवि खराब हुई, जैसा कि यासिर खुद बताते हैं।
हमारे और इधर एक गांव वालों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए वो लोग क्या सोचा, ये लोग टेररिस्ट है, ऐसा वो लोग क्या हमारे बात में हमारे बारे में वो लोग ऐसा बोला था पाकिस्तान कॉलोनी, हमारे बारे में उसको कुछ नहीं मालूम था, ये हमारा गलती था।
लेकिन जिस कट्टर विचारधारा ने गांव में 25 परिवारों को एक साथ जोड़ा था, उसी विचारधारा ने उनमें फूट डाल दी। इस गांव में अब केवल 10 परिवार रह गए हैं। यासिर का परिवार उनमें से एक है। वो कहते हैं कि इस्लामी गांव एक नाकाम तजुर्बा था, एक गलती थी।
ये पूरा छोड़ के हम लोग इधर आया, हम लोग कोशिश किया, लेकिन अभी ये आइडिया पूरा ठीक नहीं था। मैम अभी ऐसा सोचता है क्यों है तो ये मेरा नज़र में अभी 9 साल हो गया, अभी मैं क्या सोचता है तो ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है।
गलती का एहसास जताने वाले यासिर एक सिविल इंजीनियर हैं और 3 बच्चों के बाप। वो कहते हैं वो केवल बच्चों के खातिर ही इस गांव में अब रह रहे हैं। उनकी कट्टर विचारधारा के कारण आज भी उन्हें चरमपंथी समझा जाता है। मीडिया में सल्फी विलेज के नाम से प्रचलित होने वाला ये गांव जुलाई में उन 20 मुस्लिम युवाओं के गायब होने के बाद से सुर्खियों में है, जिनके बारे में पुलिस को शक है कि वो सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जुड़ गए हैं। गायब होने वाले युवा भी कट्टरपंथी सुन्नी विचारधारा सलफी इस्लाम के मानने वाले थे। पुलिस टीम में शामिल एक अफसर ने मुझे बताया कि गांव वाले कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन गांव में आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती है। अगर सल्फी विलेज में कट्टरता है तो इसके बाहर रहने वाले केरल के लाखों मुसलमान अपने त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है। केरल के एक सांसद अब्दुल वहाब कहते हैं कि राज्य के मुस्लिम देश प्रेमी हैं और समाज की मुख्य धारा का अटूट हिस्सा हैं। केवल मुट्ठी भर लोग कट्टरवादी हैं।
It is very few in what you call you can count in your fingers.
वो कह रहे थे कि कट्टरवादियों को उंगलियों पे गिना जा सकता है। उनका कहना था कि कट्टरवादी मुसलमानों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जैसा कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने में हुआ करता था, लेकिन ये उनका केवल सपना था। उस गांव में अब फूट पड़ गई है। ये थे विचार सांसद अब्दुल वहाब के। केरल में एक आदर्श इस्लामी समाज बनाने की कोशिश फ्लॉप तो हो गई, लेकिन सलफी मुसलमान इस गांव से बाहर भी आबाद हैं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उन पर नजर रखना एक बड़ी चुनौती है। जुबैर अहमद, BBC कालीकट।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 4 और 8 मार्च को चुनाव होगा, जबकि पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें 2 लड़के रात के वक्त एक लड़की को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस वीडियो में दिख रहे लड़कों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल की एक सैन्य अदालत ने अपने एक सैनिक को पश्चिमी किनारे पर घायल एक फलस्तीनी हमलावर की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की दीपक जसरोटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।